अगर ध्रुव को ये पता चलेगा कि अरमान ने डिंपल के लिए प्लान करने का सोचा है तो शायद ध्रुव अरमान से नफरत करेगा, और अरमान ये बिल्कुल नहीं चाहता था, तो कहीं ना कहीं अरमान काफी ज्यादा कश्मकश का शिकार था। लेकिन शायद ध्रुव ने अरमान की कश्मकश समझ ली थी, और जैसे ही अरमान नीचे आया, कितनी देर तक वो खड़ा होकर ध्रुव को देखता रहा, तब ध्रुव खड़े होकर अरमान को गले से लगा लिया था और बिना किसी भाव से बोला, भाई जो कुछ आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मेरा डिंपल से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे। अब जैसे ही ध्रुव ने ये कहा, अरमान के चेहरे पर एक नजर आने वाली मुस्कुराहट थी, क्योंकि अरमान शायद यही चाहता था। वहीं दादाजी अब रश्मि को और बाकी सबको शांत करते हुए बोले, बेटा खाने पर इस तरह से गुस्सा उतारने की कोई जरूरत नहीं है, रौनक ठीक हो जाएगी। आप सब लोग अब कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, कुछ ना कुछ खा लीजिए। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, सबने अपनी गर्दन हिला दी थी। वहीं रश्मि और आस्था दोनों और राधिका तीनों के तीनों सपाट चेहरों के साथ वहीं बैठी रहीं। उनकी स्थिति काफी ज्यादा अजीब थी। किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत जाना बहुत बड़ी बात थी, पर आज तो रौनक की जान बचाने के लिए उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। तो रह रहकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग कैसे रौनक को इस बात के बारे में बताएंगे, रौनक का सामना कैसे करेंगे। वेल अभी नानी माँ उठी और उन तीनों के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरी बच्ची तुम सब बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन ये परेशानी का नहीं बल्कि रौनक को संभालने का वक्त है, और अगर आप लोग इसी तरह से हिम्मत हार जाएंगे तो रौनक को कौन संभालेगा। तो आप लोग उठकर कुछ खाइए, चलिए फटाफट, और उसके बाद रौनक का सामना करना है। ऐसा बोलकर नानी माँ उन सबको इमोशनली तैयार करने लगी थी, और स्पेशली आस्था से बोली कि उसे इस तरह से भूखी नहीं रहना चाहिए, इससे उसके बच्चे पर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। अब नानी माँ की बात सुनकर सभी अब आस्था को कुछ ना कुछ खाने के लिए कहने लगे थे, और सबकी इंतजार करने पर आस्था ने धीरे धीरे थोड़ा सा जूस वगैरह और कुछ फल खाना शुरू कर दिए थे। वहीं नानी माँ आस्था को कुछ खिलाने के बाद वापस से आकर जैसे ही सोफे पर बैठी, अचानक से सामने लगी हुई पूरी दीवार में फिट बड़ी सी LED चालू की। अब नानी माँ एकदम से डर गई, क्योंकि वो LED पूरी की पूरी दीवार पर लगी हुई थी, वो बहुत बड़ी थी और काफी कम चलती थी। कभी कभार ध्रुव और आहान मैच देखने के लिए चलाया करते थे, लेकिन काफी टाइम से नहीं चली थी, तो फिर अब जैसे ही वो LED ऑन हुई तो नानी माँ डर गई, क्योंकि बहुत कम वहां पर LED वगैरह चलती थी। फिर LED पर जो न्यूज दिखाई देने लगी थी, सबका गला सूखने लगा था, और आस्था ने जैसे ही एक न्यूज TV पर चलते हुई खबर देखी तो उसकी हैरानी बढ़ चुकी थी। कहां तो वो रौनक को लेकर अभी परेशान हो रही थी, लेकिन वहां अभी LED पर जो चीज दिखाई जा रही थी और जो लाशें ही लाशें दिखाई जा रही थी, उसको देखकर उन सब की हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। सभी लोग हैरानी से LED की ओर देखने लगे थे। वहां पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें एक एंकर न्यूज दे रही थी, 12 लोगों को डेविल किंग ने बुरी तरह से काट डाला, आखिर कब खत्म होगा डेविल किंग का खौफ इस शहर से। अब जैसे ही ये न्यूज सबने देखी, सबके हाथों का रोंगटा खड़ा हो गया था। वहीं अरमान के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट थी, और ध्रुव आकाश सुमित बिना किसी भाव के उसको देख रहे थे, क्योंकि वे तो जानते थे कि डेविल किंग कौन है और किसने इन लोगों को काटा था। तभी रिपोर्टर जो न्यूज दे रही थी कहना शुरू कर दिया था, आखिरकार कब खत्म होगा डेविल किंग का खौफ, कब खत्म होगा उसका आतंक, हर बार डेविल किंग के लोग खुलकर मर्डर करते रहेंगे और सब लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं कि ये मर्डर सीधे सीधे डेविल किंग ने किए हैं, आखिरकार कब जागेगी सरकार, कब लेगी डेविल किंग के खिलाफ कोई ना कोई फैसला। ऐसा बोलकर न्यूज वाले डेविल किंग ने जितने भी अपराध किए थे उन सबकी गिनती कराने लगे थे कि किस तरह से एक बार डेविल किंग ने 2 लड़कों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी, साथ साथ डेविल किंग कितने सालों से अपराध करता आ रहा था, लेकिन आज तक उसे किसी ने भी नहीं पकड़ा। वहीं आस्था ने जैसे ही ये न्यूज देखी तो उसके माथे पर बल पड़ गए थे। वो नानी माँ की ओर देखकर बोली, ना जाने नानी माँ दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या किसी को मारते हुए किसी पर इतना सा तरस नहीं आता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। हालांकि अरमान सिंघानिया ने आस्था के सामने 3 लोगों की जान ली थी, वो भी उन लड़कों की जिन्होंने आस्था के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन उस वक्त आस्था ने अपने मन को ये सोचकर समझा लिया था कि शायद उसके पति ने उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए हथियार उठाए थे, जो कि इस सिचुएशन में कोई भी पति होता तो यही करता। तो इसीलिए अब जैसे ही आस्था ने डेविल किंग का बड़ी ही नफरत से नाम लिया, अब तो आकाश सुमित ध्रुव घूर कर आस्था की ओर देखने लगे थे। वहीं अरमान एक्सप्रेशनलेस होकर आस्था के चेहरे की ओर देख रहा था। आस्था के चेहरे पर डेविल किंग का नाम लेते हुए कितनी नफरत झलक रही थी, न जाने क्यों आस्था के चेहरे पर नफरत देखकर अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, और उसका दिल किया कि वो अभी जाए और इस न्यूज चैनल वालों के हर एक आदमी को टुकड़ों टुकड़ों में काट दे। लेकिन फिलहाल जैसे ही वो अब अपने कमरे में जाने लगा, तुरंत नानी माँ की बातों ने उसे रोक लिया था, और वो नानी माँ आस्था को समझाते हुए बोली, मेरी बच्ची तू इन सब चीजों पर ध्यान मत दे, और वैसे भी अगर इस तरह की मारकाट और खून देखेगी तो तेरे बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है, तो तुझे ये सब देखने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात उस डेविल किंग की, तो हमें पूरी उम्मीद है
कि उसे उसके किए की सजा अगर यहाँ का कोई इंसान नहीं देगा तो ऊपर वाला जरूर देगा। कोई भी गुनाह कर बच नहीं सकता है। तो देखना, वो इतना एक ना एक दिन वो दरिंदा खून के आंसू रोएगा। अब जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, अरमान ने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और उसके शरीर में कंपन तक दिखाई देने लगी थी। वहीं ध्रुव, सुमित और आकाश नानी माँ की बात सुनने के बाद उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वहाँ हो क्या रहा था। वे लोग तो अच्छी तरह से जानते थे कि डेविल किंग कौन है, लेकिन नानी माँ आस्था और बाकी कोई नहीं जानता था कि असल में डेविल किंग कौन है। हालांकि मारिया टाइगर अरमान को किंग कहकर बुलाया करते थे। ये इसके बारे में एक बार आस्था ने अरमान से सवाल भी किया था कि ये दोनों आपको एक किंग कहकर क्यों पुकारते हैं, तो अरमान ने सरसरी सा जवाब दिया था, उनका दिल जो दिल करे वो मुझे पुकार सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब आस्था ने भी ज्यादा इस बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन आज जिस तरह से आस्था डेविल किंग का नाम ले रही थी, उसके बारे में जिक्र कर रही थी, तो ये बात अरमान को अंदर तक तड़पा गई थी और वो सीधा अपने कमरे में चला गया था। तब राधिका ने आगे बढ़कर टीवी एलईडी को ऑफ कर दिया था और नाखुश होकर बोली, आस्था मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी हालत में ये सब देखना चाहिए, और ये वक्त किसी डेविल किंग के बारे में सोचने का नहीं बल्कि रौनक के बारे में सोचने का है। अभी तक रौनक को होश नहीं आया है, मैं ऑलरेडी दो बार उसके कमरे में उसे देखकर आ चुकी हूँ। वहीं दूसरी ओर वहीं आहान इस वक्त कहीं और नहीं बल्कि सीधा एक शहर के मशहूर बार में पहुंच चुका था। उसने आज जो कुछ भी किया था वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वहां जाकर उसने लगातार ड्रिंक पर ड्रिंक करना शुरू कर दिया था।
ध्रुव ने जल्दी ही आहान की लोकेशन पता लगवा ली थी और वो सुमित को लेकर उसे जगह पहुंच चुका था, और वहां जाकर उन्होंने देखा कि इस वक्त वहां आहान पूरी तरह से नशे में टल्ली हो चुका था और रोए जा रहा था। अब वहां की ऐसी हालत देखकर ध्रुव और सुमित का भी गला भर आया था। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उसे समझाते हुए बोले कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसे इस तरह से रिग्रेट नहीं करना चाहिए। लेकिन वाहन बार बार एक ही बात बोला जा रहा था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बिना उसकी मर्जी के मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, मुझे खुद से शर्म आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे खुद को और रौनक फेस करूँ। ये कहते हुए वो एकदम छोटा मासूम बच्चों जैसा लग रहा था। वहीं सुमित हैरानी से आहान को देख रहा था। आहान वही था जो क्रिमिनल को मारते वक्त ये नहीं देखता था कि उसकी हड्डी टूटेगी या उसकी जान जाएगी, वो एक ही बार में क्रिमिनल की जान ले लिया करता था। लेकिन आज तो आहान इतना ज्यादा टूटा हुआ सा लग रहा था मानो कि वो आज वो था ही नहीं। कैसे दोहरी जिंदगी जी रहे थे ये लोग, एक रूप में बेहद खतरनाक थे और एक रूप में एकदम सादा सिंपल और किसी को भी इन पर प्यार आ जाए ऐसा था। वेल, आहान बड़बड़ाते हुए ध्रुव के गले में झूल गया था। वो समझ चुके थे कि वो बेहोश हो गया है। सुमित और ध्रुव दोनों ने आहान उठाया और सीधा उसे मेंशन में ले आए थे। हालांकि ध्रुव ने बाकी सबको बता दिया था कि रौनक को पूरी रात होश नहीं आने वाला है, कम से कम वो 24 घंटे तक बेहोश रहने वाली है, उसके बाद ही उसे होश आएगा, इसीलिए सबके सब अपने अपने कमरों में जाकर आराम करें, इस वक्त सबको आराम की जरूरत है। आहान उसके बाद अपने कमरे में नहीं गया था, वो ध्रुव के साथ उसी के कमरे में रह गया था। आस्था ने राधिका को भी मेंशन में ही रोक लिया था। राधिका अपने कमरे में अकेली थी और आसमान की ओर बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी, और जिस वक्त सुमित आहान को लेकर मेंशन के अंदर आ रहा था, उसने बालकनी में खड़ी हुई राधिका को देख लिया था। ना जाने क्यों राधिका को देखकर उसे क्या हुआ कि वो वहां ध्रुव के साथ आहान को कमरे में छोड़ने के बाद वो सीधा राधिका के पास आ गया था। उस वक्त राधिका बाहर की तरफ देख रही थी। अब सुमित जैसे ही वहां आया, उसने राधिका के ठीक पीछे खड़े होकर पूछा, तुम ये क्या कर रही हो इतनी रात को? अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, राधिका तुरंत हड़बड़ा गई, लेकिन इससे पहले कि वो गिरती, सुमित ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। लेकिन क्योंकि वे बालकनी में थे जहां जगह कम थी, जिसकी वजह से सुमित भी ज्यादा देर राधिका को होल्ड नहीं कर पाया और राधिका को लेकर वो बालकनी में ही गिर गया था। इस वक्त दोनों के बीच एक इंच का भी फासला नहीं था। वहीं राधिका सुमित के इस तरह से अपने पास आने पर उसकी ओर देखकर बोली, हटिए मेरे ऊपर से, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की या पकड़ने की, आइंदा मुझसे दूरी बनाकर रखिएगा। राधिका ने जैसे ही नीचे लेटे लेटे ये बोला, सुमित हैरान हो गया था। एक तो उसने उस लड़की को गिरने से बचाया, ऊपर से वो उसे एटीट्यूड दिखा रही थी। तब सुमित ने और कसकर राधिका को पकड़ लिया और उसे लेकर एकदम पलटी मार दी थी, और अब सुमित के नीचे थी राधिका, उसके ऊपर था सुमित। राधिका के घने लंबे काले बाल सुमित के चेहरे पर फैल गए थे और सुमित उसके बालों की खुशबू में खोसा गया था। सुमित राधिका को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। कभी उसकी नज़र राधिका के खूबसूरत लाल सुर्ख होठों पर ठहर रही थी, तो कभी वो उसकी गहरी गहरी झील सी आंखें देख रहा था। अब सुमित के सांसें बढ़ने लगी थीं और वो धीरे धीरे राधिका के होठों पर झुकने लगा, लेकिन राधिका ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बेरुखी से बोली, मिस्टर सुमित, मुझे लगता है कि अब आपके यहाँ से चले जाना चाहिए।
अब जैसे ही राधिका ने बिल्कुल रूखे व्यवहार में ये बोला, सुमित की नसें तन गई थीं और एक बार फिर उसने राधिका को अपने नीचे कर लिया था, खुद उसके ऊपर आ गया था और उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, लगता है खुद ज्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे। हाँ, क्या समझती हो तुम खुद को? ये जो तुम जिंदगी जी रही हो, ये जिंदगी मैंने तुम्हें दी है। और तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने आकाश से वादा ले लिया है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, तो वो तुम्हारी गलतफहमी है। भले ही मैंने अपने दोस्त को वादा किया हो, लेकिन मिश्रा जी का अग्रवाल, मैं तुम्हें इतना ज्यादा मजबूर कर दूंगा क्योंकि तुम खुद ब खुद मेरे पास आओगी, समझे तुम? ये कहता हुआ सुमित कुछ अलग ही दुनिया का प्राणी लग रहा था। वहीं राधिका हैरान हो रही थी सुमित इस तरह की बातें सुनकर। वो सोच रही थी कि कहाँ तो वो हमेशा सुमित के आगे पीछे घूमते रहा करती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, पागलों की तरह उसे चाहती थी। लेकिन ये क्या, आज तो सुमित खुद बखुद उसे ये कह रहा है कि वो उसे इतना मजबूर कर देगा कि राधिका खुद उसके पास आ जाएगी। तो राधिका को हैरानी हुई, अचानक से उसके होठों पर एक नजर आने वाली मुस्कुराहट थी। तब तक सुमित गुस्से से उसके ऊपर से उठ गया था।